इनको एग्जेम्प्ट किया है फ्रॉम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ से. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है जो कि हियर कर रही थी सेवन पर्सन पैनल, और उन्होंने जो है अप्रैल से ये लोग कर रहे थे, तो उन्होंने आज अपनी ये जो रिपोर्ट लेकर आए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये सारे के सारे मैंडेटेड लेटर्स जो हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि फोर्ड साहब एक प्रॉपर पॉलिसी प्रायोरिटीज बनाना चाहते थे, जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और आप ये सारी चीजें मुझे रिपोर्ट करेंगे और आपकी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये मैं आपसे चाहता हूं. अच्छा, हम आपको बता दें कि मैंडेट लेटर होता क्या है. मैंडेट लेटर एक जॉनरिक सा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोई भी प्रीमियर देता है, जिसमें कि उसमें बताया होता है कि मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और सूबे का जो प्रीमियर है वो उनसे क्या चाह रहा है.
यूनिटी इन द
कैबिनेट. हाँ जी, तो वही आज जो है जस्टिस एमरो माशे कैरा कैटसानिस ने आज कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है ये वैसे तो नंबर वन प्रोगेटिव है उसका प्रीमियर का कि वो कैसे देना चाहता है. नंबर टू वो इसलिए देना चाहता है कि वो जो टास्क इनको देता है उसके लिए इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहता है, और वो ये भी देखना चाहता है कि वो टास्क उन्होंने इफेक्टिवली किया है कि नहीं. उसके बाद जब ये चीजें अनाउंस करते हैं, जब पॉलिसी अनाउंसमेंट, उसके ऊपर भी पब्लिक के सामने इनकी एक तो यूनिटी होनी चाहिए कि जी बिल्कुल हमारा सेंसस था, हमारे साथ हम बैठे थे, हमने सारा कंसेंसस था, हम इसमें बैठ के बात की थी, और फिर अगर वो पॉलिसी गलत जाए तो हर किसी को जो है रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जा सकता है.
ऑन्टेरियो इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कमीशन जो है उसके सामने जब ये मुद्दा लेके गए थे सीबीसी वाले,
सीबीसी
तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं साहब रिलीज करें इसको
2018 में.
यस, उस बेस पे जो है प्रीमियर डग फोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट पे जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सेवन पैनल का वो बेंच था उनका, उन्होंने कहा कि नहीं साहब नहीं, ये
उसकी मर्जी है, उसका प्रेरोगेटिव है उसका एज अ प्रीमियर,
सीक्रेट एक्ट है ये,
बिल्कुल ठीक है. और उन्होंने कहा जी कि ये जो 23 इन्होंने लेटर्स लिखे थे उनको, ये बिल्कुल सही है और उन्होंने बिल्कुल सही किया. अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक तुर्की ने 7 उन लोगों को आज अरेस्ट किया है जिन्होंने मोसाद को इन्फॉर्मेशन दी है तुर्की की. इन्होंने कहा जी कि इन्होंने ट्रैक किया और मॉनिटर किया लोकल टारगेट्स को, और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये इन्होंने इस्तांबुल और इज्मिर में, जहां पे कि पुलिस ने अपने रेड्स डाले थे, तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जिसको MIT भी कहते हैं उसने, उस पर उनको ये सारी चीजें मिली. उन्होंने कहा जी कि इन्होंने उन लोगों के ऊपर जो है ट्रैकिंग डिवाइसेज लगाई और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको दी इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को. तुर्की जो है वो ऑलरेडी इसराइल को बड़ी दफा कह चुका है कि ये काम हमारे मुल्क में ना करो, इसके बड़े सीरियस जो है कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और जो है अगर आपने खास तौर पे हमास के किसी भी ऑफिशियल को या बंदे को जो कि हमारे तुर्की में ठहरा हुआ है आउटसाइड यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज, उसको आपने हंट करने की कोशिश की तो हम उसका जवाब देंगे. हेड ऑफ इसराइल्स डोमेस्टिक शीन बेट सिक्योरिटी एजेंसी जो थी, उसने दिसंबर के महीने में कहा था कि हम हमास के हर बंदे को, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में है, लेबनान में, तुर्की में, कतर में, हम उनको हंट डाउन करेंगे और हम उनको मारेंगे. और उसी के ऊपर तुर्की की फिर ये जो है उनको वार्निंग आई थी. इसके साथ साथ जो है प्रेसिडेंट अर्दोगान, वैसे तो उन्होंने जो कुछ ये हुआ अक्टूबर 7 को उसको अच्छा नहीं समझा, लेकिन जो इसराइल कर रहा है गाजा में उसके ऊपर भी ये बड़ा एतराज करते हैं. ऑल्सो तुर्की हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझता है, और इसके अलावा वो बहुत ज्यादा वेस्ट को भी क्रिटिसाइज करते हैं जो कि वो इसराइल की बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है. तो इसलिए जनाब आज तुर्की ने बड़ा एक्शन लिया. द गार्डियन की ये खबर है जी, और फिर उसके बाद जो है ये बाकी भी न्यूज़पेपर्स में नजर आई. फॉर्मर CIA सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है जोशुआ शुल्स, 35 ईयर्स उनकी एज है, उनको 40 ईयर्स की प्रिजन दी गई है फॉर एस्पायनाज, कंप्यूटर हैकिंग, लाइंग टू FBI ऑफिशियल्स एंड हैंडिंग क्लासिफाइड मटीरियल टू विकीलीक्स. और उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी कन्विक्ट किया जा रहा है, और फॉल्स स्टेटमेंट्स जो उन्होंने 2020 में की थी. जो बल्क ऑफ सेंटेंस इनको दी गई है वो वॉल्ट 7 लीक्स के लिए दी गई है, और ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग डिटेल्स हैं अबाउट CIA स्पाइंग ओवरसीज के, किस किस तरह ये स्पाइंग दुनिया के दूसरे मुल्कों में करते हैं. इसका नाम दिया गया था डिजिटल पर्ल हार्बर, और ये शो करता है कि US की ये जो एजेंसीज हैं ये कैसे हैक करती हैं लोगों के पर्सनल एप्पल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, और उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेती हैं, और अचानक से जो आपका इंटरनेट कनेक्टेड TV होता है उसको ये लिसनिंग डिवाइसेस में चेंज कर सकते हैं. ऐसा सॉफ्टवेयर है इनके पास, अगर ये किसी को सुनना चाहते हैं कि उनके घर में क्या डिस्कशंस हो रही हैं. और वो कहते हैं जी کہ یہ جس وقت ساری ڈیٹیلز آئیں تو سی آئی اے نے آل آؤٹ وار جو تھی وہ اگینسٹ وکی لیکس کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم کڈنیپ یا اسیسینیٹ کریں گے اس کا جو وکی لیکس کا فاؤنڈر ہے جولین اسانج کو, اور پھر انہوں نے اس کو اسپائناج چارجز کے لیے 2019 میں انڈائٹ بھی کیا تھا. جج جیسی فرمن جو ہیں آج انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جوشوا صاحب نے کتنا نقصان پہنچایا ہے امریکہ کو, لیکن یہ میسو ہے, اور شوز بے شک اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا لیکن جیل سے بھی وہ کانسٹنٹلی کلاسیفائڈ مٹیریل لیک کر رہا تھا, اور یو ایس اٹارنی ڈیمین ولیمز نے کہا تھا کہ یہ موسٹ بریزن ہینوس کرائمز آف اسپائناج ہے امریکن ہسٹری کے اندر. تو کافی اس کے اوپر جناب شور و راج مچا ہے. یونیسیف نے کہا جی کہ تقریباً 17,000 کڈز جو ہیں غزہ کے اندر وہ ان اکمپنیڈ ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہیں یا تو نہیں مل سکتے ہیں, اور ہزاروں ہی جو ہیں ظاہر ہے ان کی ڈیتھس ہو چکی ہیں. اوور 1 million پیلسٹینینز جو ہیں وہ فیئر کرتے ہیں کہ اسرائیلی ملٹری جو ہے کبھی بھی ان کو ختم کر دے گی, اور اب جو ہے اسرائیلی ملٹری کے اٹیکس جو ہیں رفا جو کہ ایک آخری سکون والا ایریا رہ گیا تھا اس میں ہزاروں ہی بچوں کی یہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں, ہزاروں لوگوں کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے بھی ایک جینوسائڈ کا لے کر آئے تھے موومنٹ, اس میں ایک یعنی کہ ایک پٹیشن ڈالی تھی انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. اسرائیلی آفیشلز جو ہیں انہوں نے آج ڈینائی کیا سارے کا سارا, یہ جو یو ایس نے آج ایکشن لیا ہے کہ جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سینکشنز کریں گے فور اسرائیلی سیٹلرز کو, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی بھی وائلنس پیلسٹینینز کے اگینسٹ نہیں دکھائی ہے, لیکن اس کے بیچ میں اوور 27,000 جو پیلسٹینینز ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اوور 66,000 جو ہیں وہ ہرٹ ہیں ان اسرائیلی اٹیکس میں سنس اکٹوبر 7. یو ایس نے آج سینکشن کیا ہے ڈیوڈ چائے تسدائے کو, اینن تانجل یونون لیوی کو کہ انہوں نے اسالٹ کیا اور انٹیمیڈیٹ کیا پیلسٹینینز کو, اور شالوم زکرمین کو فار اسالٹنگ اسرائیلی ایکٹیوسٹ, اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی اب فریز کیے جائیں گے. یو ایس کہتا ہے چاہتا تھا کہ وہ جو اسرائیلی گورنمنٹ کا منسٹر ہے اتمر بن گویر اور بیزل ایل سموٹرک ان کے خلاف بھی ایکشن لے, لیکن پھر اس نے کہا کہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لے رہا ہے, یعنی کہ نہیں لے رہا ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن. یو ایس کانگریس ممبر جو ہیں جی الہام عمر, آج ان کے خلاف پھر ایک نیا مورچہ کھل گیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک سپیچ کی تھی ایز جو سومالی امریکن سے ان کے ساتھ ایز سومالی امریکن, اور اس کو جو ہے مس ٹرانسلیٹ کیا, لیکن میڈیا نے اس کے اوپر اتنا شور مچایا کہ اب جو ہیں لوگ بڑا بھڑک گئے ہیں یو ایس اے کے اندر. انہوں نے کچھ اور کہا تھا لیکن ان کا جو ٹرانسلیشن آئی وہ یہ, انہوں نے کہا جی کہ میں فورن انٹرسٹ جو ہے اس کو یو ایس انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ پریفر کروں گی. اب یہ تو لوگوں نے کہا بھائی یو ایس کانگریس وومن ہے تو یو ایس کے انٹرسٹ کو پیچھے چھوڑ کے کون سے فورن کنٹریز ہیں جن کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو آگے رکھے گی. میجوری ٹیلر گرین جو ہیں انہوں نے آج ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ایک ریزولوشن لایا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فورن ایجنٹ ہے ایک فورن کنٹری کے اندر, تو اس کا کیا کام ہے امریکہ میں. ہاؤس میجورٹی وپ ٹام ایمر جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ایک ایتھکس کمیشن جو ہے وہ بٹھایا جائے اور انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کہا ہے. فارمر ریپبلکن پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ جو ہے رون ڈیسانٹس, انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اس کو بھی ڈپورٹ کرو امریکہ سے, امریکہ میں اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. عمر جو ہے اس نے یہ تمام کے تمام ایلیگیشنز جو ہے ان کو ریجیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہمیشہ میری ایتھنیسٹی اور ریلیجن کی وجہ سے میرے پہ اٹیک کیا جاتا ہے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں دے آر روٹیڈ ان زینوفوبیا اینڈ اسلاموفوبیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیشہ سے ایز میں افریقن مسلم وومن ہوں, افریقن بھی ہوں مسلم بھی ہوں اور وومن بھی ہوں, ان تین وجہ سے مجھے ہمیشہ سے اٹیک کیا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ راشدہ طالب جو کہ ایک اور کانگریس وومن تھی جس نے کہ جب پیلسٹائن کے حق میں اور اسرائیل کے اگینسٹ بولا تھا تو اس کو بھی سینسر کیا گیا تھا ہاؤس کے اندر نومبر میں. تو یہ اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو مسلمز بچارے اگر بول رہے ہیں اسرائیل کے اگینسٹ ان کے خلاف جو ہے کافی ایکشن لیا جا رہا ہے. اینڈ جناب دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی نان اینڈ کبوب. آپ کو پتا ہی ہے کہ نان اینڈ کبوب کے بڑے زبردست کھانے ہوتے ہیں اور بڑی زبردست ان کی جو لوکیشنز ہیں اس کا بھی بڑا اچھا ڈیکور ہے, تو آپ کو بیٹھ کے کھا کے بھی مزہ آئے گا. یہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں ان کو, آپ جو ہے 5042 سیٹلائٹ ڈرائیو یونٹ فلمی 3 مسساگا میں دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں ڈالنے کے لیے اپنے آرڈر 905-282-9797. اینڈ جناب راجہ بادشاہ آپ کو بالکل رائٹ کوریج دیتے ہیں, بہت سارے آپ کے پیسے بچاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو بھی مجھ سے کوئی سویدھائیں چاہیے تو آپ ان کو کانٹیکٹ کریں. آل اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ ہیں یہ. راجہ بادشاہ جی کا نمبر ہے 647-290-3773. اینڈ جناب ڈینٹسٹری آف مسز ساگا وہ کہتے ہیں جی ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਲੇ ਦੰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰਸ, ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਕੋ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿ ਇਨਵਿਜ਼ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਨੇ ਹੈ ਤੋ $1,000 ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਆਫ ਦੇਂਗੀ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ $149 ਕੀ ਹੈ। ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਜੋ ਲੈਤੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਦਾਂਤੋਂ ਕੇ ਵੋ ਐਜ਼ ਲੋ ਐਜ਼ $30 ਲੈਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਲੇਜ਼ਰ ਟੀਥ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਕੌਨ ਕਰੇ ਐਂਡ 9058721100 ਐਸੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਕਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਸਾਥ ਤਮਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਅਲਬਤਾ ਜੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਵੋ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੇ ਸਾਥ, ਵੋ ਤਮਾਮ ਕੇ ਤਮਾਮ PMLN ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੈ PPP ਕੋ ਵੀ ਲਲਕਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ PPP ਹੈ ਵੋ ਇਨਕਾ ਅਬ ਮੇਨ ਅਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ PTI ਕੋ ਤੋ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਟ ਹੀ ਦਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਡਿੰਗ ਮੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸੇ ਜੋ ਇਨਕਾ ਬੈਟ ਕਾ ਜੋ ਬੱਲਾ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥਾ ਵੋ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਰੈਲੀਜ਼ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇ, ਉਸਮੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੋ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਟੈਰਿਫਸ ਕੋ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਆ ਥਾ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਵੋਟ ਦੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਬ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੇ ਕੇ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। PTI ਕੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਰਊਫ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਲੇਂ ਡਾਲ ਦੇ, ਵੋ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੇ। ਅੱਜ ਵੋ ਜਰਨਲਿਸਟੋ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਸੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸਕੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਆ ਹੈ, ਔਰ PTI ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਐਨਵੋਇਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਲੀਡਰਸ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੇ ਉਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਉਨਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲਬਤਾ ਹਮਾਰਾ ਝੁਕਣਾ ਕਿਸੀ ਕੇ ਆਗੇ ਯਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਮੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਬੀਬੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਮੁਲਕ ਮੇ ਵੋ ਸਿਰਫ PPP ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਤੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਚੈਲੇਂਜਸ ਕੋ ਸਿਰਫ PPP ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਮੇ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਹੇਟਰੇਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਨੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਹਮ ਆਏਂਗੇ ਤੋ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੋ ਨੀਚੇ ਕਰੇਂਗੇ, ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰੇਂਗੇ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ 100% ਜੋ ਹੈ ਹਮਕੋ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਵੋਟ ਦੋ ਔਰ ਕਿਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਨਾ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਤੋ ਮੁਲਕ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕਰੇ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਲਸੇ ਮੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀ ਸਭ ਬੜੀ ਬਾਤ ਥੀ ਵੋ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਥੀ ਕਿ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕੀ ਤਕਰੀਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕੀ ਭੈਣ ਆਸਿਫਾ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲਾਵਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲਾਵਲ, ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਕਾ ਮਾਲ ਸਮਝਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਹੈ ਭੈਣ, ਵਾਟ ਇਜ ਦਿਸ ਗੋਇੰਗ ਆਨ ਮਾਜਦ ਭਾਈ, ਵਾਟ ਇਜ ਦਿਸ ਗੋਇੰਗ ਆਨ, ਆਪ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਆਪ ਕਰਾਂਚੀ,
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ,
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਜਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਜੱਜਸ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ ਉਲ ਅਹਿਸਾਨ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਾਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਨਕੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਭੇਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਤੋਂ 2029 ਮੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਨ ਟੂ ਬੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਸੋ ਅਮੰਗਸਟ ਅਦਰਸ। ਤੋ ਬਹਰਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 206(1) ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 1973 ਵਿਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਆਨਰ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦਿਸ ਆਫਿਸ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਰਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਇੱਕ ਨਿਆ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰ। ਭੈਣ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹਰਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਸੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਥਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਕੁਛ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਚਾ ਹੈ। जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है जी कि इंटरनेट को हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे फरवरी 8 के जब इलेक्शंस हो रहे होंगे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि इलेक्शन डे में इंटरनेट को शट डाउन करें और उसको कंसिडर किया जाए। आज मीडिया के साथ ये बात कर रहे थे जबकि इनकी मीटिंग हुई थी टू रिव्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। उन्होंने कहा कि ऐसी भी कोई सिक्योरिटी मुल्क के अंदर खराब नहीं है और चीजें जो है वैसे अंडर कंट्रोल है और इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान मिलिट्री के जो पर्सनल है वो बड़ी मुस्तैदी से जो है वो सारे अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ईसीपी की इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काम करता रहेगा अगर इंटरनेट के अंदर डिस्ट्रप्शंस भी आई तो। ये है चक्कर। आईएसपीआर ने आज कहा है जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने 24 टेररिस्टों को पिछले 3 दिन में मार गिराया गया है। एक क्लियरेंस ऑपरेशन जो कि मच्छ और कोलपुर कॉम्प्लेक्सेस के एरियाज में बलूचिस्तान के अंदर हो रहा था उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमको एक इंटेलिजेंस मिली थी इन टेररिस्टों के बारे में जो कि अटैक करने वाले थे 2 कॉम्प्लेक्सेस को बिटवीन जनवरी 29 एंड 30। तो हमने इन टेररिस्टों को हंट डाउन किया और इनको मारा है। इनमें से जो मेन थे जो कि वांटेड लिस्ट में थे वो थे शहजाद बलोच, अताउल्ला, सलाउद्दीन, अब्दुल वदूद, जीशान। ओ माय गॉड,
सोच रहा था कहां है,
हाँ, कहां है वो तो वो जनाब वो कहते हैं जी कि इसके अलावा हम बाकी लोग जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं।
बाकी लोग भी आमिर
आईएसपीआर वालों एक और भी बैठे हैं साढ़े को। अच्छा जी चलो एक अच्छी खबर भी आपको पाकिस्तान की सुनाते हैं। पाकिस्तान का परमानेंट मिशन जो है इन यूनाइटेड नेशंस उसको आज फर्स्ट प्राइज मिला है फॉर सोशल मीडिया एंगेजमेंट एट 9th इंटरनेशनल जिनीवा एंगेज अवार्ड्स इन स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, इसकी एनजीओज, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके जो ताल्लुकात थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और दूसरे जो जिनीवा में एक्टर्स थे उनके साथ जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट थी पाकिस्तान ने इसमें कमाल कर दिया। अच्छा जी पायन चलो ठीक है अच्छी गल है। इसमें जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यूनाइटेड नेशंस इन जिनीवा बिलाल अहमद साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बिहाफ पे ये अवार्ड लिया और उन्होंने कहा जी कि मेरी टीम जो है इंतहाई हार्ड वर्किंग है उसकी वजह से हमको ये मिला है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के करंट एम्बेसडर इन बीजिंग है खलील हाशमी उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने भी बड़ी अच्छी टीम यहां पे बिठाई थी। चलो जी बड़ी अच्छी गल है। अच्छा जनाब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी मस्जिदों के स्यापे अब इंडिया में पड़ गए हैं। हैं जी एक दिल्ली में पड़ गया है, एक सुनहरी मस्जिद का पड़ गया है, एक अब ये और ये ज्ञान वापी मस्जिद का वाराणसी में पड़ गया है। अच्छा जनाब आज अब कल हमने आपको बताया था कि जो ये ज्ञान वापी मस्जिद है इसके बेसमेंट में हिंदुओं को अपनी पूजा करने की इजाजत दे दी गई है क्योंकि कुछ हिंदुओं ने कहा जी कि ये मस्जिद जो है ये भी एक मंदिर ढाके बनाई गई थी लेकिन अगेन कोई आर्कियोलॉजिकल इसके ऊपर तो सर्वे का कुछ ऐसा आया नहीं है। जैसे कि बाबरी मस्जिद में भी आया था लेकिन बहरहाल जी उसको भी गिराया तो लग रहा है अब इसको भी गिराया जाएगा। इसका रिएक्शन शो करते हुए आज टॉप मुस्लिम लीडर्स जो है उन्होंने बेतहाशा क्रिटिसाइज किया है इसलिए कि जिस वक्त ये अपील जो थी कोर्ट के अंदर गई थी तो कोर्ट ने कहा जब तक ये केस चल रहा है तो हिंदू जो है ज्ञान वापी मस्जिद की बेसमेंट के अंदर अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करते हुए आज मौलाना खालिद समीउल्लाह रहमानी ने जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है उन्होंने कहा जी कि वाराणसी की जो कोर्ट के जज हैं उन्होंने मुसलमानों की जो अपील थी उसको बिल्कुल रद्द किया है और ये डिसरिगार्ड किया है करोड़ों हिंदू सिख क्रिश्चियन जो कि ये बिलीव करते हैं कि हिंदुस्तान एक बुके ऑफ फेथ्स है और रिलीजन्स है और यहां पे हर किसी को जस्टिस मिलेगा। इंतहाई हेस्टी जजमेंट दी गई है और तमाम एविडेंसेज और फैक्ट्स को रिफ्यूज और ओवरलुक किया गया है। ये जो हमारा संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसमें प्रोहिबिट किया जाता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट किया जाए किसी दूसरी प्लेस ऑफ वर्शिप में। इसके अलावा जो उन्होंने कहा जी कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा योगदान पेश किया है लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनको जस्टिस सर्व नहीं की जा रही। सैयद अरशद मदनी प्रेसिडेंट जमीयत उल इस्लाम हिंद जो है उन्होंने कहा जी कि हमको लग रहा है कि मुसलमान जो है उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जुडिशरी की तरफ से भी उनको कोई रिस्पाइट नहीं मिल रही है। मलिक मोहसिन खान ने कहा जी कि हमको ऐसे लग रहा है कि लॉ और कोर्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं वो इंक्रीजिंगली एक जो मेजोरिटेरियन एजेंडा है बीजेपी गवर्नमेंट का उसको खाली सर्व कर रहे हैं इसलिए हमारा जो जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमानों का फेथ है वो गुम होता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल एन ए फारूकी ने कहा जो कुछ ज्ञान वापी मस्जिद के सिलसिले में किया गया है हमने बहुत सारे रिक्वेस्ट जो हैं हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी डाले थे, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं मानी गई। तो अब हम जो है इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपद मुर्मू जो है उनके पास हम जा रहे हैं अपनी शिकायत लेके, और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जो है उनके पास अब जाएंगे, तो शायद हमको जो है कोई इंसाफ मिले। वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जो है उनकी दुनिया में लोग बड़ी तारीफ करते हैं, डरते नहीं है किसी से, जो उनको फैसला देना होता है वही देते हैं। इसके अलावा जनाब आज हंगामे, काफी फायरवर्क्स देखे गए इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर। अपोजिशन मेंबर्स जो हैं इंडिया अलायंस के, उन्होंने वॉकआउट किया बोथ पार्लियामेंट हाउसेज से इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन, और उसके अंदर जो मेन मुद्दा जो लड़ाई का था वो ये था कि झारखंड के अंदर क्यों गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म नहीं की जा रही है, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो है फिर वो उसके ऊपर एतराज आया। अच्छा, एतराज क्या आया? एतराज ये आया कि एक जो है कांग्रेस के एक लीडर जो हैं उन्होंने एक कहा, उसके बारे में कहा गया कि जी उनको जो है ये लोकसभा के एमपी हैं डी के सुरेश, इन्होंने कहा कुछ, तो उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा के हाउस लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि ये जो सुरेश साहब के कमेंट्स हैं जिसमें कि उन्होंने बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, इंतहाई खौफनाक है, जिसमें कि सुरेश साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ ऑफ इंडिया को जस्टिस ना दी गई तो हो सकता है कि वो एक सेपरेट कंट्री का डिमांड करेंगे। तो उसके ऊपर गोयल साहब ने कहा कि कांग्रेस क्या इस मुल्क में इत्तेहाद और यूनिटी नहीं रखना चाहती है? क्या कांग्रेस इस मुल्क को तोड़ना चाहती है? अगर नहीं तोड़ना चाहती है तो वो माफी मांगे, हम कंडेम करते हैं अगर कांग्रेस पार्टी की ऐसी थिंकिंग है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुरेश साहब नंबर वन राज्यसभा के मेंबर नहीं है, नंबर दो मैंने टीवी देखा है जिसमें कि उन्होंने सामने आके कहा है कि मेरे वर्ड्स को मोड़ तोड़ के पेश किया गया है, मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप फिर भी और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो एक प्रिविलेज कमेटी की इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ आप बिठा सकते हैं। हिंदुस्तान को कभी भी कांग्रेस ने तोड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही वो किसी अपनी पार्टी ना किसी और पार्टी को ये टॉलरेट करेगा कि वो हिंदुस्तान को तोड़े। हमारा हमेशा से एक बयान रहा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारा मुल्क एक है। उसी के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और हम सब ने जो है बहुत सारी, उन्होंने अपनी जिंदगियां दी और हमने बहुत सेक्रीफाइसेस की हैं। इसके बाद जो है टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन साहब जो है उन्होंने अपने एक्स पे लिखा कि टीएमसी ने इसलिए वॉकआउट किया था क्योंकि जो है ये जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है ये सेंट्रल एजेंसीज को बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है अगेंस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है भाई, आज ये कुछ हुआ। और जनाब बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट की है हमारी जो बाजी है कंगना रनावत उसकी पिटीशन, क्योंकि उसने कहा था जी कि ये जो 2020 की जो पिटीशन थी जिसमें कि एक जावेद अख्तर साहब ने इनके ऊपर डेफिमेशन केस डाला था जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि इसने मुझे बैड नेम देने की कोशिश की है, उसके जवाब में इन्होंने उसके ऊपर एक केस डाला था कि ये बिल्कुल गलत है और ये सब कुछ सही है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि ये दोनों केस चूंकि एक ही नेचर के हैं तो इसलिए इन दोनों को साथ साथ रन करना चाहिए। जस्टिस प्रकाश नायक ने आज ऑर्डर पास करते हुए कहा कि इन दोनों को क्लब बिल्कुल नहीं किया जा सकता है क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने पहले जो थी वो कंप्लेंट डाली थी आपके खिलाफ, तो इसलिए उसको सेपरेटली और आपने जो की उसको सेपरेटली जो है उसको डील किया जाएगा। खुश हो पाई ना तुझे?
खुश है जी।
अब आज ठीक है। और जनाब आज संजू बाबा ने यानी कि संजय दत्त साहब ने जम के तारीफें की हमारे सुल्तान ऑफ स्विंग की यानी कि वसीम अकरम साहब की, और आपको पता ही है बड़े लेजेंडरी फिगर हैं और वहां पे केकेआर को देते थे बोलिंग कोचेस भी, कोचिंग भी देते थे हिंदुस्तान के अंदर। भारत संजय दत्त से इनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है। आज एक इवेंट दुबई में हो रहा था डिजिटल करेंसी और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि अकरम मेरा भाई है, मैं इसको बड़े दिनों से बहुत अरसे से मैं इसको जानता हूं और ये बड़ी मेरे लिए ऑनर है कि फिर से मैं वसीम भाई के साथ मिल रहा हूं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स दैट आई हैव सीन इन माई एंटायर लाइफ और ये गॉड ऑफ क्रिकेट है, और जिस वक्त ये स्विंग करता था तो माय गॉड हर कोई इससे डरता था, कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अकरम साहब ने भी अपने एक्स के ऊपर बड़ा इनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा जी आई एम हम्बल्ड बाय द खलनायक ऑफ बॉलीवुड, इनकी मूवी थी ना खलनायक वो। तो अकरम साहब जो हैं उन्होंने अपने 20 साल के करियर में 916 विकेट्स लिए हैं, 460 इन ODI एंड टेस्ट, और वो कहते हैं जी सेकंड फास्टेस्ट बॉलर है टू रीच 500 इंटरनेशनल विकेट्स इन 354 मैचेस। ही इज जस्ट बिहाइंड श्रीलंका's मुरलीधरन जिसने के इतनी ही विकेट्स हासिल किए हैं 24 मैचेस के अंदर। ही वाज द की टू पाकिस्तान's विक्ट्री, वर्ल्ड कप विक्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया इन 1992। तो जो है वो वाकई इनका बड़ा नाम है, तो आज ये बड़ा प्यार मोहब्बत दिखा गया इनके बीच में। ठीक है जी, श्रीलंकन जो एक नहीं सॉरी क्या हुआ है ये? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जनाब, ये जो श्रीलंकन जो टीम है उसको जरा अग्रेसिवली खेलना पड़ेगा और अपनी प्रोएस दिखानी पड़ेगी। ये बातें आज की कैप्टन जो है श्रीलंकन टीम के धनंजय डे सिल्वा ने। इनके मैचेस जो है अब अफगानिस्तान के साथ जो है वन ऑफ रेड बॉल मैचेस शुरू होने वाले हैं और लास्ट में जो है इनकी अब रैंकिंग है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो टीम कभी मैचेस जीता करती थी, लास्ट अक्टूबर में इनको बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी गई थी बाय एन इनिंग्स एंड 22 रन्स बाय पाकिस्तान इनके अपने ही होम ग्राउंड पे, और उसके बाद से ये काफी डीमोरलाइज है इनकी टीम। उसके बाद वो अच्छे से कुछ आगे इंटरनेशनल लेवल पे कर नहीं सकी। डी सिल्वा ने कहा जी कि जो वन ऑफ थ्री कैप्टन्स हैं, क्योंकि अब श्रीलंका के अंदर भी तीन डिफरेंट टेस्ट ओडीआई और टी20 के लिए तीन डिफरेंट कैप्टन्स बनाए गए हैं, तो इन ये भी जो है टेस्ट के कैप्टन है। इन्होंने कहा जी कि हमें पूरी अपनी फोर्स से खेलना पड़ेगा और अपनी टीम को बताना पड़ेगा कि हम जो है अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। ये जो टीम्स हैं इनकी अब सीरीज जो है टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है इंग्लैंड के साथ भी, तो उससे पहले ये बात कर रहे थे। ये जो नई टीम है उसके अंदर थ्री अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं। अलबत्त जो डी सिल्वा हैं उन्होंने कहा जी कि हमको अगर अपना नाम पैदा करना है तो हमको फिर एज अ टीम खेलना पड़ेगा। और जनाब, जो हमने कल आपको बताया था द लास्ट डांस बिटवीन मेसी और रोनाल्डो की टीमों के बीच में हो सकता है, यानी कि अल नसर और मेसी की इंटर मिलान के बीच में हो सकता है, तो वो लोग बड़े एक्साइटेड थे सऊदी अरेबिया में, लेकिन हुआ ये है कि अल नसर जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर मैदान में उतरा था और लायनल मेसी जो था वो टीम के अंदर था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इनके लिए डिसअपॉइंटिंग रहा जब जो है इसको इंटर मिलान को बड़ी डिफीट मिली अल नसर से और इतनी बैड 6-0 से ये हारे। अल नसर का जो ब्राजीलियन प्लेयर है टेलिस्का, उसने जनाब हैट्रिक तीन जो गोल्स हैं बैक टू बैक 12 मिनट के अंदर अंदर किए 24 मिनट्स में। तो हालत ये हो गई थी कि जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने तो स्क्रीन के दो हिस्से कर दिए दो जॉइंट्स को दिखाने के लिए। एक हिस्सा जो स्क्रीन का था वो दिखा रहा था मेसी जो बाहर बैठा हुआ है और बड़ा कंसर्न है और बड़े परेशानी में है, और दूसरी तरफ वो दिखा रहे थे रोनाल्डो को वीआईपी लाउंज में बैठा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है, मजे कर रहा है, क्योंकि जाहिर है उसकी टीम तो जीत रही थी। और जनाब ये बड़ी फिर ये जो सारा क्लिप है ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। रोनाल्डो इसलिए नहीं खेल सका जी क्योंकि उसको कॉब इंजरी हो गई थी और उसके लिए वह ये बाहर बैठा हुआ था। इन दोनों ने ही जो ग्रेट लेजेंड्स हैं इन्होंने 13 बैलेडोर्स जो हैं वो जीते हैं, तो ये लास्ट डांस जो था इसमें वो दोनों को आमने सामने देखना चाहते थे, वरल जी आए नहीं। और जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान का जो डेविस कप टाई होने वाला है इंडिया के साथ। ये जो लास्ट टाइम हुआ था ये कजाकिस्तान में हुआ था 2014 में, जब इंडिया ने 4-0 से जीता था। इंडिया अभी भी जो है फेवरेट टीम है, लेकिन आज बड़ी ही पैशनेट स्पीच देखी गई जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट डेविस कप टाई। अब इंडियन कैप्टन जो है जीशान अली हैं, उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब जो थे ही वॉज पार्ट ऑफ द 1964 इंडियन टीम जो कि आज से 60 साल पहले आके पाकिस्तान में खेली थी, और मेरे वालिद साहब उस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने तीन मैचेस खेले थे और अपने तीनों के तीन मैचेस जीते थे, तो मैं जो यहां पे आज पाकिस्तान में आया हूं तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। हम अच्छी गेम करने की कोशिश करेंगे और टफ टाइम देंगे। ये जो टाई है ये एक पॉजिटिव स्टार्ट है इंडिया और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स टीमों के बीच में, मुझे लगता है कि ये आगे बहुत दूर देर तक जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच में यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दो सिंगल्स जो है सैटरडे को हैं, फिर एक डबल और दो सिंगल्स संडे को होंगे इन ग्रुप वन प्लेऑफ्स, और ये सारे मैचेस खेले जाएंगे ग्रास कोर्ट्स में एट पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन इस्लामाबाद।
हो गया जी,
खुश हो माजिद भाई?
अजी पानी पी लो, पानी पी लो,
पानी पियेंगे।
कल मैं इधर नहीं था मगर आई डोंट नो इफ यू टॉक्ड अबाउट लुइस हैमिल्टन।
हाँ वो चेंज कर रहे हैं, वो फरारी में जा रहे हैं।
अमेजिंग,
ओह माय गॉड, यस लुइस हैमिल्टन, यस यस यस।
मैं व्हेन आई हर्ड दैट न्यूज़,
कुछ ऐसे स्पेशली वो अपने बाल बनाते हैं ना वीडियो के साथ।
या आई नो, व्हेन आई हर्ड दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स ड्राइविंग मर्सिडीज, अब वो फरारी की तरफ जा रहे हैं ना, आई कुडंट पर्सनली बिलीव। आई सेड नो नो,
नॉट पॉसिबल,
बिकॉज मर्सिडीज एंड लुइस
सिनोनिमस।
And he is living there and he is going to...
I know, he is joining Ferrari.
कैसे जंप कर सकता है बंदा?
मौजूद भाई कुर्सी तो की सारी गेम है, किसी दूसरे ने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। What is this? सानू भी पैसे दो, असं विकन वास्ते तैयार बैठे हैं, मैनू क्यों तुसी कुर्सी चेंज कर लो, मैं फौरन कुर्सी चेंज कर लांगा। है अच्छा? $1 million दे, मैनू बस देखो फिर मेरिया पूर्तियां। अच्छा कैसे मैं कुर्सी चेंज करूंगी।
अच्छा तो हाँ वो आमिर ने एक रखा हुआ है आपके लिए।
हाँ अच्छा, आपको तो पहले जो है ना लिफाफे आते थे ना, आज मैंने देखा आज अब आपको डब्बे आने शुरू हो गए हैं। अब डब्बे आ रहे हैं आपको,
डब्बे भी आते हैं।
हाँ माजद भाई यानी,
और वो डब्बे इतनी आसानी से खुलते भी नहीं।
हाँ तो सानू भी लोगों को ना, सानू भी कोई लिफाफा या डब्बा भेजो। चलो ठीक है, अब आपकी तरक्की होगी, आपको अब डब्बे आ रहे हैं, उनको बोलो हमें लिफाफे भेजो यार,
छोटे छोटे मोटे।
हाँ छोटे मोटे
थैलियां भेजो कपड़े की, जिसे वो नहीं हम कॉइन जमा किया करते थे।
चुवानिया दुवानिया। अच्छा खुद लंबे लंबे अपने नोट रहे, हमको चिल्लर के ऊपर आप भगा रहे हो।
आप कह रहे थे छोटे लिफाफे मुझे,
बड़े अफसोस की बात है।
छोटे लिफाफे को छोड़ो, वो
चिल्लर ले लो,
चिल्लर ले लो,
बड़ी 100 साल तक जमा कर दे लो, मिलियन डॉलर बन जाए।
पूरा थैलियां होती थी वो छोटी वाली,
तुम्हें क्यों नहीं रख दे, वो तुम्हें रख लो लिफाफे,
बस लगाने की जगह नहीं है कोई सी।
बड़े अफसोस की गल है मजे से मजे, आपकी इस बात पे मैं 2 दिन आपसे नहीं मिल रही। मेरी आपसे
कटी हो गई, कटी हो गई। सब ये थी आज की न्यूज, इन बकाया की न्यूज इंशाल्लाह ताला कल। अब आपको लिए चलेंगे प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान, एंड जहां आप सुन सकेंगे मगरिब की अजान 5:31 पे, एग्जैक्टली 25 सेकेंड्स के बाद आप सुन सकेंगे मगरिब की अजान। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसके बाद फिर जनाब जुनेद जमशेद साहब की आवाज में बहुत ही खूबसूरत कलाम आप सुनेंगे। मगर सर जी थैंक यू सो मच,
इंशाल्लाह,
थैंक गॉड, ओके। बाकी की बातें मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, मगर फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको कहां पर, प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान। समय क्रम टोरंटो और गिरदोनवा के इलाकों में अब टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज का, तो आइए सुनते हैं मगरिब की अजान।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر.
یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، کشادے درے دی سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرائے لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، یا الہی 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 یا الہی.
سن رہے تھے آپ پروگرام ساز و آواز اور میرا نام عارفہ مظفر. صاحب یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے. بہت سی جگہوں پہ جب آپ کو اسٹیٹک ملتا ہے تو ہمارا لوکل نمبر 6478724900 آپ پروگرام کو بالکل سن سکتے ہیں اپنے فون پہ، اور جب آپ کا امپورٹنٹ فون آئے گا تو آپ اپنی کال لے لیجئے گا. اس پروگرام کو ہم یہیں اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں نے ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان تمام کو ضرور یاد رکھیے جو آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں. کہتے ہیں اچھا کرو، اچھا بو، اچھا کاٹو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور وہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی منزلوں کو آسان کرے، قبروں کو جنت کے باغوں کا حصہ بنا دے. آمین سم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد دے اور رزق عطا کرے اپنی جناب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہم تمام کو اپنا محتاج کرے، کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرے. ان سب کے ساتھ جانے والوں میں مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. اجازت دیجیے گا، ایک دعا کی طرف بڑھتے ہیں میری جانب سے. خدا حافظ.
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی تجھ سے دعا مانگتا تجھے تو مانگوں گا کسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر
مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا
میں سب پہ کرم ایک سا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی تجھ سے دعا مانگتا ہوں
یہ نفرت کی آگ نہ گلشن جلا دے جو اس آگ کو میرے مولا بجھا دے
میں ایسے کرم کی ہوا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Virash Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशे आपके लिए, विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा इश्क तारा मेरा, बाकी अंधेरा
हो जाओगी देखना।
देख लेना फिर संग लागे रखते वो हमको जला के वो अर जुटवा दे ले जा कस में लगा के रग रग में मलंगा है
जाऊंगा तेरे शिकुल को देखा